बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पुतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपाकर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई।
ओम शांति। आज अति बुद्धिमान व्यक्ति एक बार किसी जंगल से गुजर रहे थे और चलते चलते राह भटक गए। पांचों ने अपनी अपनी राय दी क्या करना चाहिए। पहले ने कहा कि मैं जो करता हूं वो तुम देखो, तब तक यहीं रुकना। और वो एक झाड़ होता है, उस झाड़ पर चढ़ जाता है और वहां से निरीक्षण करता है कि इस घने जंगल से निकलने का सबसे उचित, सबसे आसान, सहज मार्ग कौन सा है। वो ऊपर चढ़ जाता है और उसे मार्ग दिखाई भी देने लगता है कि ये मार्ग है जो इस जंगल से हम बाहर सहज निकल सकते हैं इस पर चलकर। दो नंबर का जो साथी होता है, जो अतिशय बुद्धिमान है, वो सोचता है मुझे दाएं जाना चाहिए। तीसरा कहता है मुझे अंदर से स्फूर्ण आ रही है कि बाएं जाना चाहिए। चौथा कहता है मुझे लगता है अब यहां रुककर कुछ फायदा नहीं, वापस लौट जाना चाहिए। और पांचवा कहता है कि मुझे लगता है शायद सामने चलकर कुछ मिलने वाला है, इसलिए सामने जाना चाहिए। जो ऊपर चढ़ा है पेड़ पर, वो ये सोचता है कि मुझे तो मार्ग मिल चुका है, और नीचे जब देखता है तो पाता है मेरे साथी है ही नहीं। शायद वो सब गलत थे, शायद उन सब ने गलतियां की। उनको रुकना चाहिए था मेरे लिए, मैं नीचे आता और सबको मार्ग बताता। तो ये सोचता है कि मैं राइट हूं और मेरे चारों साथी गलत। परंतु वो सही नहीं था, परंतु वो पांचों के पांचों ही सही थे। क्यों? क्योंकि जो दूसरा साथी था, जो दाएं की ओर बढ़ा, उसे जंगल में बहुत भयावह खूंखार प्राणियों का सामना करना पड़ा, और वो सामना करने करते करते वो ये सीख गया कि कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे रहा जाए, जहां निरंतर भय है, रात का अंधियारा है, ऐसी परिस्थिति में भी कैसे रहा जाए, और जहां निरंतर आक्रमण होते रहता है जंगली जानवरों का। तीसरा जो साथी था, जो बाएं मुड़ा, वो जैसे बाएं आगे बढ़ता है, कुछ चोर डाकू उसको पकड़ लेते हैं, उसका सारा सामान ले लेते हैं, उसे बहुत मारते भी हैं, और फिर अपने ही गिरोह में उसे शामिल कर लेते हैं। पर जैसे ही ये बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों के साथ रहता है, धीरे धीरे उन डाकुओं के अंदर परिवर्तन होने लगता है, उनके अंदर भी नैतिकता, उनके अंदर भी धार्मिक भाव, उनके अंदर भी परमात्मा प्रेम जागृत होने लगता है केवल उसके सहचर्य मात्र से, और वो सब के सब धीरे धीरे ईश्वर प्रेमी बन जाते हैं। जो अगला साथी था, चौथा, जिसने ये सोचा कि अब यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, पीछे जाता हूं, वो पीछे गया और उसने एक नया मार्ग ढूंढा, ताकि जो उधर रहने वाले लोग हैं, जो इस जंगल से सब डरते हैं, कोई जाना नहीं चाहता, भय लगता है, वो उनको बताता है कि एक मार्ग ये भी है का, और उस मार्ग से फिर कई लोग जाना आरंभ करते हैं। और जो पांचवा साथी था, जो आगे बढ़ गया, उसे ऐसी ऐसी नई बातें पता चली, उसे ऐसी ऐसी नई चीजें पता ली, ऐसे मार्ग जो लोगों के मन में भय था, पता नहीं इस जंगल में कौन भूत प्रेत रहते हैं, जो जाता है वापस नहीं आता है, वो एक नया मार्ग बनाता है आगे का। तो पहले ने सोचा था शायद मैं ही राइट हूं और मेरे जो दो चार साथी है वो गलत है, परंतु अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि वो पांचों ही सही थे। जो जिस मार्ग से गया उसमें कल्याण छिपा हुआ था, इसलिए ये सोचना शायद जो मैं कर रहा हूं वही सही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये गलत है। ये जो नाटक बना है सृष्टि का बहुत अद्भुत है, और नाटक तो एक ही है पर हर व्यक्ति का अपना अपना, अपने जीवन का एक छोटा सा ड्रामा भी है जिसे वो खुद निर्माण करता है। तो मुरलियों में कई बार वाक्य आता है कि ये जो ड्रामा है ये बना बनाया है, बनी बनाई इसमें बन रही है, यहां कोई कुछ कर नहीं रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि ये कब बना, ये क्यों बना, क्यों ऐसा ही बना, इसमें ये सीन ऐसा क्यों है, उसमें वो सीन वैसा क्यों है। और संसार के इतिहास को यदि देखो, संसार के साहित्य को यदि देखो, तो सारे संसार में ऐसा कोई साहित्य नहीं है जिसमें इस नाटक की बात है। और जो बातें भगवान ने नाटक के विषय में, इस ड्रामा के विषय में, इस संसार के विषय में बताई है, शायद ही संसार में किसी ने ऐसी बातें बताई होगी। और हमें यदि अचल अडोल रहना है इस जीवन में, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी जो हम नहीं चाहते हो, यहां बहुत सारे ऐसे अप्रिय अप्रिकर दृश्य आएंगे जो कि हमें दुखी कर देंगे। इसीलिए सभी दुखों से अपने आप को, सभी संकटों से, सभी अप्रिय घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने की एक विधि, एक तरीका है इस ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल खड़े रहना। जैसे कहा, यह बना बनाया है, यह ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके साथ क्यों नहीं होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। यहां तक कि बाबा की महावाक्य है, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न डाल रहा है तो बाप कहते हैं उस व्यक्ति को निर्दोष समझो, क्योंकि ड्रामा में उसका वही पार्ट है। इसलिए इस ड्रामा को समझना बहुत 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 जरूरी है। आज की इस क्लास में कुछ ऐसी गुह्य बातों की हम चर्चा करेंगे, हमें लगता है कि वो बातें यदि 24 घंटे में हर एक ब्राह्मण आत्मा एक बार मन के मन में रिवाइज करे तो स्थिति बहुत शक्तिशाली रहेगी। और वो सारी की सारी बातें ड्रामा से संबंधित है। तो ऐसी हम टोटल 21 ड्रामा की शक्तिशाली पॉइंट्स देखेंगे, जो कि एक एक पॉइंट बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। अगर उस एक पॉइंट को भी हम ले ले और एकांत में जाके बैठ जाए और उस पर चिंतन करे, तो जीवन में जो समस्या है, जो कठिनाई है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संताप है, और जो ब्राह्मण जीवन में हलचल हो रही है, वो हलचल समाप्त हो जाएगी और हम स्थिर, हम अचल, हम अडोल बन जाएंगे। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ है। अगर ये ड्रामा का ज्ञान ना होता तो हम बिखर गए होते, अगर ये ड्रामा का ज्ञान नहीं होता तो परिस्थितियों का कैसे हम सामना करें, क्योंकि यहां पर इतने प्रश्न हैं कि एक प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढने निकले कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे दिखाया है कबीर भक्ति कर रहा है, सब जानते हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, परंतु उसका जो घर है उसी के बाजू में एक कसाई का घर है। तो जैसे ही पूजा पाठ और भक्ति करके मंदिर से लौटता है तो पाता है कि ये कसाई काट रहा है जानवर को। इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है उसको देखकर कि ऐसा क्यों है, यहां से चला क्यों नहीं जाता कहीं, इतना मेरा सतो प्रधान सब कुछ और ये देखना पड़ता है मुझे रोज। तो उसने क्या लिखा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो गला काटने वाले हैं उसके पास तेरी झोपड़ी है, जो करेगा सो पाएगा, तू क्यों भयो उदास, तू क्यों उदास हो रहा है, उसका कर्म है वो जाने, हमें क्यों प्रभावित होना है किसी और के कर्म से। और ये कर्म की गति बहुत 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 सूक्ष्म है, जिसने जो किया है इस जीवन में उसको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान बन गया है, भगवान इस कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करते, वो भी साक्षी है। ड्रामा की ऐसी कौन सी बातें, ये सारी बातें शायद हम सब ने सुनी है, परंतु आज के इस क्लास में ये सारी बातें हम एकत्र कर रहे हैं। हो सके तो इसे अपने मन में, मन की डायरी में नोट करके रख देना है और हर दिन 24 घंटे में एक बार ये सारी की सारी पॉइंट्स याद करनी है। याद करते ही मन शांत हो जाएगा। जो विद्रोह करना चाहता है, जो संघर्ष करना चाहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यहां पर भी ऐसा क्यों, ये अन्याय, वो अन्याय, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। ये बना बनाया है, ये ऐसा ही बना हुआ है। सबसे पहली पॉइंट, ये ड्रामा एक्यूरेट है, त्रुटि रहित है, करेक्ट है। इस ड्रामा में कहीं कोई दोष नहीं है। कितनी बड़ी बात है, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है संसार में हो रहा है, अनाचार, पापाचार, अत्याचार, वहां की छोड़ो यहां ही हमें दिख रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। बुद्धि में याद रखना है, ये ड्रामा जो है एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें जरा भी कोई त्रुटि नहीं है। हमें दिखाई दे रही है क्योंकि हम अपनी संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं, ट्यूब्यूलर विजन, हम केवल उतना देखा है, हमें दिखाई दे रहा है, हमें जो व्यापक स्वरूप है उसका वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सूक्ष्म कल्याण छिपा है। इसलिए ये जो कंप्लेनिंग नेचर है, ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, कितना डिस्टर्ब कर देता है मन को। मुरली चली थी अभी अभी शांतिवन में, बाबा ने कहा फिकर बाप को दे दो, फकूर ले लो। और जो फिकर में है, यहां पर चमकता हुआ सितारा नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? बोझ, बोझ दिखाई देता है। कल की अव्यक्त वाणी, सुबह की, संडे की पार्टी से मुलाकात, जो भारी है वो मूंझे हुए है, जो हल्के है वो मौज में है। अपने आप से पूछना है कि मैं इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते किस स्थिति में हूं, भारी या बोझ वाली। जो भारी है वो मूंझे हुए, कंफ्यूज्ड है, विक्टिम ऑफ वंस ओन थिंकिंग, कंफ्यूज्ड थिंकिंग, अपने ही मूंझे हुए विचारों का वो शिकार है। समझ नहीं आता है, कुछ निर्णय नहीं ले पाते, अनिर्णित अवस्था है। शेक्सपियर के हेमलेट की तरह, टू बी और नॉट टू बी, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, निरंतर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्योंकि बोझ है, भारीपन है, एक अजीब सा भारीपन है, पता नहीं क्यों भारीपन है। कोई विकारों का आकर्षण नहीं है फिर भी भारीपन है, कोई चिंता नहीं है फिर भी भारीपन है, क्यों ये भारीपन है, इसकी खोज करनी है। कहां से आया ये भारीपन? बाबा ने कहा कल, रूहानी मौज में रहो, जरूर किसी ना किसी सूक्ष्म श्रीमत या मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए भारीपन आया है। सुबह की मुरली में था, बाप की याद में भोजन बनाओ और खाओ, खाओ के बारे में तो नहीं था पर बनाने के बारे में था। जो भोजन हम बना रहे याद में बनाया, जो भोजन हमने खाया आज, चलो दोपहर के भोजन की बात ले लेते, क्या मौन में खाया? कीचड़ पट्टी, बाह्यात विचार सुबह की मुरली में था, और केवल कहते रहते हैं ये किया वो किया, बातों के क्या पकोड़े, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, केवल बातें बस। बाबा ने कहा संकल्प से, व्यर्थ संकल्प को बाप को दे दो। इसकी हिम्मत है? प्रश्न पूछा अभी अभी जो मुरली चली थी, दो चीजों पर अटेंशन रखना है, एक समय एक संकल्प। बाप की दो आशाएं, संपन्न और संपूर्ण, दो तीव्र पुरुषार्थ है, एक बिंदी एक सेकंड। इंदौर से मुलाकात, दो बातें, कौन सी दो बातें थी? फल और बल। जो सेवा तुम मधुवन में करते हो उसका क्या मिलता है? फल मिलता है और बल मिलता है। और दूसरी बात थी, हमेशा याद रखो बाप की और परिवार की नजर हम पर है, मैं हमेशा निगरानी में हूं, कोई ना कोई मुझे देख रहा है, कमरे में अकेले है, बाप और परिवार की नजर हम पर है, हम आदर्श है परिवार के लिए, हमसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट कर्म, पाप कर्म जो हम बाप की डिसर्विस करने के निमित्त बन जाए। साकार महावाक्य है, बाबा के बच्चे तुम्हें दैवी कर्म करने, भ्रष्ट कर्म करना बंद करो। चार दिन पहले मुरली में था, एक दिन आएगा, गवर्नमेंट हाउस में तुम्हारा म्यूजियम होगा, आगे की लाइन थी, अब उनको जाकर समझाओ ये विकारी धंधा बंद करो, स्वयं की उन्नति करो। तो फिर से ड्रामा की ओर आते हैं। ये ड्रामा कैसा है? एक्यूरेट है। अपने ही मन को समझाना, हे मन क्यों संघर्ष कर रहा है, ये ड्रामा एक्यूरेट है। हलचल में नहीं आओ, शांत हो जाए, मन को खुद ही शांत करना है। उसके अंदर जो उहापोह, जो उद्वेग, जो आवेश, जो विद्रोह का भाव या जो बदले का भाव है किसी एक आत्मा के प्रति या कुछ आत्माओं के प्रति, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये जो भाव है, यहां सबको वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। तो ये ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, करेक्ट है, इसमें जरा भी त्रुटि दोष नहीं है। दूसरी बात, ये ड्रामा बना बनाया है, अनादि है, अविनाशी है, इसको किसने बनाया नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि इसने बनाया तो उसने क्यों बनाया, और तब बनाया तो तब क्यों बनाया, और बनाया अर्थात फिर खत्म कब होगा। बाबा ने कहा इसकी टिक टिक चलती रहेगी, ये ड्रामा बना बनाया है, रेडीमेड। क्योंकि इसके विषय में कोई भी प्रश्न अगर पूछे गए तो उनका फिर कोई उत्तर नहीं है, इसलिए बाबा ने सीधा कह दिया ये ड्रामा बना बनाया है। चार दिन, 11 तारीख की साकार मुरली थी, शायद हमने पहली बार ये लाइन सुनी मुरली में, पहली बार। आज तक बाबा ने हमेशा कहा ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें मेरा भी पार्ट है, पर ये 11 तारीख अभी नवंबर की मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा बाप ने ड्रामा दुख के लिए नहीं बनाया है, अर्थात उसने बनाया है, अर्थात उसने बनाया है। क्या था मुरली में? पहली बार ही सुना, नहीं तो ऐसा बाबा कभी नहीं कहता कि मैंने बनाया, पर ये एकमात्र मुरली है जिसमें आया कि बाप ने ड्रामा दुख दुख के लिए छोड़ो, पर बने वाली बात है, मतलब तुमने बनाया। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, किसी के मन में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। सही है क्या ये? भगवान उवाच रॉन्ग है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है, उसी ने ये भी कहा है। ऐसी तीन चीजें खड़ी करके रखी है बाबा ने इस ड्रामा, इस संसार में, शायद तीनों ही काल्पनिक है, माया, ड्रामा, कुदरत। ये नदी कैसे आती है, ये कैसे होता है? कुदरत। तुम पाप करने कर्म में लग गए, क्यों? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, माया, माया ने किया। ड्रामा बाबा के लिए भी बाबा ड्रामा है, ढाल है, भगवान के लिए खुद भी। अगर ड्रामा को हटा दिया जाए तो सारे बच्चे बाप को पकड़ लेंगे अपने अपने प्रश्नों के साथ, बताओ मेरे जीवन में ये क्यों है, वो क्यों है। तो ये ड्रामा बना बनाया है। इस ड्रामा में ये कभी बना हुआ नहीं है। तीसरी बात, ये ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए यदि अचल अडोल रहना है तो इस ड्रामा को एक खेल की तरह देखना है, एक कार्टून शो की तरह देखना है। ये पपेट शो है, यहां खेल चल रहा है, ये स्टेज है जिसमें खेल चल रहा है, ये ग्राउंड है जहां पर खेल रहे प्लेयर्स, हम ऑडियंस है, इसलिए दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। क्रोध आता है देखकर कि रावण कैसे हंस रहा है, हा हा हा, और लक्ष्मण की स्थिति दिखाई देती है, कितना दुखी हो रहा है, सोचता है इस रावण को कब पकड़ू और कब मार दू, बहुत क्रोधित है। हम देख रहे हैं, पर थोड़ी देर के बाद वही रावण और वही लक्ष्मण पर्दे के पीछे बैठ के चाय भी पी रहे हैं, क्योंकि खेल है, क्योंकि नाटक हो रहा है, ये जो दुश्मनी है खेल है, नाटक कर रहे हैं। हिंदी में कहते हैं नौटंकी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, खेल चल रहा है, और खेल में तो ये सब चाहिए। अगर रामायण में से रावण को हटा दो, क्या महत्व कर रहा रावण, राम को कोई जानता, कोई नहीं। राम का तो महत्व ही तब है जब रावण की एंट्री होती है हमारे जीवन में भी। हम हीरो कब बनेंगे, जिस दिन से रावण ने एंट्री की, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विकार। इस ड्रामा को कैसे देखना है, कार्टून शो चल रहा है, मजे का है ये, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसको सीरियसली नहीं लेना है। इसने मुझे ऐसा क्यों किया, इसलिए उदास दुखी गमगीन, तीन दिन बात नहीं, रूठना रूसना रोना आंसू, मुझे इसने ऐसा कहा। देवी नाराज है, भक्तों ने पर्दा खोला, संतोषी मां नाराज है, क्योंकि दुर्गा मां ने उसे कुछ कह दिया है बाजू वाले मंदिर की। वो कहती है क्यों देवी हमें रक्षा करो, वो कहती है ना मैं नहीं, पहले ये दुर्गा को कुछ बोलो। आत्माएं नाराज है एक दूसरे से, दुखी है, झगड़ा करते हैं, सूक्ष्म झगड़ा, वैसा वाला नहीं संसार वाला, तो दिल खट्टा है एक दो के प्रति, वो इधर से आता है वो इधर से जाता है। हमारे पास ओपीडी में माता आई थी एक, क्या तकलीफ है, चेस्ट पेन, यहां दर्द होता है, कब होता है, चलते है तब ना, ढलान पर चढ़ते है तब ना, बैठे बैठे ना, कब होता है ये, कैसा दर्द है, ईसीजी करो, ईसीजी नॉर्मल, बाकी टेस्ट सब नॉर्मल। एक आत्मा है जैसे वो सामने आती है यहां दुखता है, यहां एकदम से अंदर से, कुछ कराना है तो करा लो एंजियोग्राफी, इसमें क्या आएगा, बाकी दुखता है, बाकी सब में नहीं दुखता है, वो सामने आते ही इधर चेस्ट पेन चालू होता है। अब दवा दो, क्या दवा दूं, गहरी नफरत, किसी के प्रति घृणा, किसी को माफ नहीं किया है अभी तक, माफ नहीं किया है उस आत्मा को, पकड़ के रखा है, अतीत का बोझ ढो रहे हैं, रोज योग में गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं बैठकर। कोई कोई आके कहता है योग करते हैं जैसे ही बैठते एकदम पुरानी बातें याद आती है, 20 साल पहले वाली, 10 साल पहले वाली, बाकी दिन भर याद नहीं आती है। वो वैसा ही है जैसे किसी मरीज को खुजली है, दिन भर कुछ नहीं होता, जैसे ही सोने जाता है चालू हो जाती है, दिन भर कुछ नहीं होता है। जैसे योग में बैठे बाबा की याद में मगन, एकदम से व्यक्ति सामने आते हैं, पुराने पुराने जो बीत गए भूल गए, शायद कीचड़ा साफ नहीं किया है। मन में कितने लोग बैठे हैं अंदर, या कोई मोह है गहरा। अभी अभी मुरली चली थी, बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है, जिन्होंने बाप को अपने दिल तख्त पर बिठाया है और जो श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। और दिल में यदि कोई दूसरे बैठे हैं, अवैध प्रवेश कर रखा है, वहां बाप नहीं आते, खाली चाहिए व्यक्तियों से, वस्तुओं से, मोह से, संसारिक बंधनों से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, विकारों से। जितना हृदय जो स्वच्छ होगा, भगवान वहां विराजमान है। तीसरी बात, इस ड्रामा को कैसे देखना है, खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, लोग खेल रहे, खिलाड़ी है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था ये फुटबॉल की मैच है, 5 खिलाड़ी माया के, 5 प्रकृति के, तुम्हें अब गोल बचाना है तो खेल है, लाइटली लेना है, चीजों को भारी नहीं लेना है। नहीं तो सोचते रहेंगे उसने ऐसा क्यों कहा। आत्माओं के मुंह पर हम पट्टी तो नहीं लगा सकते ना कि तुम ऐसा कहो ऐसा नहीं कहो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो, ऐसा नहीं हो सकता। हरे की अलग अलग प्रकृति है। उसके बाद में चौथी बात, हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक के विकार अलग अलग है, हर एक की विशेषता अलग अलग है, हर एक का प्रारब्ध अलग अलग है, हर एक का माजी पास्ट अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक सीन अलग अलग है। इस ड्रामा में कोई भी सीन रिपीट नहीं होता। हमारे जीवन में एक सीन ऐसा आया था जो बहुत दर्दनाक था, पर अब नहीं आएगा वो, अभी सीधा 5000 साल के बाद, अभी तक क्यों उसको सोच रहे हो गया वो। एक सीन एक ही बार आता है 5000 साल में, आया गया बस। अब सोच सोच के खुद को हलकान, खुद को परेशान नहीं करना है, ऐसा क्यों हुआ, हो गया। लाइट, अतीत में नहीं वर्तमान में अब जीना है, इस पल। या तो व्यक्ति, किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात कि पास्ट एंड फ्यूचर आर सूडो टाइम, झूठा है ये, सत्य क्या है, केवल अभी हाल, ना कि माजी और ना ही मुस्तकबिल, केवल हाल जो है, प्रेजेंट जो है वही सत्य है, बाकी आगे पीछे जो है वो झूठ है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ना ही उसकी बहुत चिंता करनी है। जैसे एक कैदी जो संत है, योगी है, पर क्रूर शासकों ने उसे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और दूसरे दिन सुबह उसे फांसी की सजा लग होनी है। वो चिंतित है बेचारा, क्योंकि फांसी, कितना भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो परंतु अब मरने का समय है। वो अपने गुरु को याद करता है, वहां बैठे बैठे गुरु प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या हुआ, वो कहता है कल सुबह फांसी होने वाली है। गुरु कहते कल ना, आज तो नहीं ना, अभी निश्चिंत होकर बैठ जाओ, और वो आराम से सो जाता है। फिर वो कल होगा ना, कल देखेंगे उसका, आज अभी क्या करना है, बस वो सोचना है। ये समय, कल की अव्यक्तवाणी, पार्टी से मुलाकात, संगम युग का समय महत्वपूर्ण है, महान है, कमाई का है, इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना है। समय और संकल्प, डायमंड हॉल की मुरली, हमारा टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो, जरा भी वेस्ट ना हो। यहां से वहां तक जा रहे तो भी बुद्धि में चिंतन चालू रहे, ज्ञान का मनन चालू रहे, खूब चिंतन करो, खूब मनन करो, एक एक पॉइंट को लो और गहराई में जाओ। ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर मछलियां मिलती है, मुरली में था, नीचे जाओ तो रत्न मिलेंगे। तो हर एक का पार्ट अलग अलग है, हमारा जैसा पार्ट है हमारे बच्चों का वैसा ही पार्ट नहीं होगा। हम ब्राह्मण बन गए, हमारे परिवार वाले सब के सब ब्राह्मण बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं होगा। पकड़ के उसको, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता है। घोड़े को पानी तक लेके जाया जा सकता है, पानी पिलाया नहीं जा सकता है जबरदस्ती। जब जिसका पार्ट होगा आएगा वो। इसके लिए इस ज्ञान देने में भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। सब ब्राह्मण बन जाए इच्छा बहुत अच्छी है, पर दुखी अगर हो रहे इस इच्छा से तो अपने आप को डिटैच कर दो, अलग हो जाओ। तो चौथी बात, हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक का भाग्य अलग अलग है, हर एक के विकार अलग अलग है, हर एक की विशेषताएं अलग अलग है, हर एक का प्रारब्ध, सब कुछ अलग अलग है। एकांत में बैठ के सोचना अपने ही परिवार के बारे में, मां बाप बहन भाई, लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार के बारे में, यहां पर भी हर एक का पार्ट अलग अलग है। हम किसी के पार्ट में क्यों इंटरफियर करें? हाँ, किसी कर्म भोग के वश इस जन्म में शायद वो मां बनी है, बाप बना है, या कोई बना है, या कोई बॉस है, कोई साथी है, कोई जूनियर है, कोई ना कोई कुछ पति बन गया है, कोई बच्चा बन गया है, पर वो आत्माएं हैं, उनका पार्ट अलग अलग है। और जितना मैं आत्माओं से डिटैच रहूंगी उतना ही अडोल रहूंगी, जितना आत्माओं से अटैचमेंट होगी उतनी इच्छाएं एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी और फिर दुख होगा परिणाम में। उसके बाद में पांचवा, ये ड्रामा रहस्यपूर्ण है। और एक बात याद रखनी है इस ड्रामा की, इस ड्रामा के कुछ राज अंत तक राज रहेंगे, शायद कभी भी उद्घाटन नहीं होगा उनका। ये राज है क्या? बाबा ने कहा इस ड्रामा की शोभा इसी में है कि यहां पर कुछ राज अंत तक राज ही रहेंगे। इसके लिए तो इस ड्रामा को आश्चर्यवत देखा जाता है, कुछ राज अंत तक राज रहेंगे, शायद बाबा कभी भी नहीं खोलेगा, ऐसे कुछ एक दो राज रहेंगे। इसके लिए ये जिद नहीं करनी है कि सारे उत्तर हमको मिलने ही चाहिए, कुछ उत्तर छोड़ दो। जीवन के कई सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अपने आप समय अनुसार मिलेंगे। जिद नहीं करनी है कि मुझे ढूंढना ही है, दुखी हो जाएंगे। ये आत्मा ऐसी क्यों करती है, इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, ये अब तक तो ठीक थी आज दुश्मन क्यों बन गई। इसको रहस्य ही भगवान बताएगा, एक दिन खुद ही टच होगा अंदर से, क्या है क्या नहीं है। तो ये ड्रामा कैसा है? रहस्य पूर्ण है। अगली बात, ये ड्रामा फिक्स्ड है, अर्थात प्रीडेस्टीन पहले ही फिक्स किया गया है। एक बार निर्वेर भाई साहब का क्लास हो रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि बाबा के पास हो सकता है बहुत सारे ड्रामा आए, वो डायरेक्टर है ना, तो बहुत सारे ड्रामा आए, चलो ले लो 12 ड्रामा आए, अलग अलग स्किट, अलग अलग कहानी वाले। बाबा ने इस ड्रामा को चुना क्योंकि ये सबसे बेस्ट था, और हम कहते ये ठीक नहीं है। चुनने वाले ने बहुत सोच समझ के चुना है, उसके पास बहुत सारे लोगों ने भेजी अपनी अपनी कहानियां फिल्म के डायरेक्टर के पास, उसने इस कहानी को चुना, ये कहानी सबसे बेस्ट है, द बेस्ट। ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये ड्रामा प्रीडेस्टिन्ड है। उसके बाद में अगली बात, ये ड्रामा भगवान को पसंद है। तो क्या हमें भी पसंद होना चाहिए? हम कहते बाबा हमको भी पसंद है, ये एक सीन छोड़कर बाकी सब ठीक है, ये एक छोड़कर। जैसे एक सूफी संत किसी गांव में पहुंचा, कुटिया बनाकर रहने लगा। उसका जो पड़ोसी था रोज उसे बहुत तंग करता था, कभी किचड़ा फेंक देता था, कभी आवाज करता था, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, हर दिन उसको परेशान करते रहता था। इस सूफी संत ने कभी भी अल्लाह से, खुदा से कभी कुछ नहीं मांगा था, पर पहली बार जब इबादत के लिए सुबह बैठता है तो कहता है, खुदा मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगता हूं, इसको यहां से हटाओ, इसका कुछ कर, आखिर कब तक मैं सहन करूं, बर्दाश्त की भी हद है, मैं चुपचाप सहन किए जा रहा हूं, सहन किए जा रहा हूं, सहन किए जा रहा हूं, एक मास हो गया सहन कर रहा हूं, कुछ नहीं कहता हूं। भगवान की आवाज आती है, भगवान कहता है वो मेरा 40 साल से पड़ोसी है। और तुम एक महीने में हार गए। ये ड्रामा भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। इसलिए कहा ये सारी पॉइंट्स 24 घंटे में एक बार किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर रिवाइज करनी है, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है आसपास, सूक्ष्म में, जहां पर वो स्थान नहीं है जहां मैं अभी रहता हूं, सेवा केंद्र, घर या ऑफिस या और कोई जगह, या मधुबन, एक पहाड़ है जिसमें मैं बैठा हूं और मैं वहां बैठकर सोच रहा हूं, ये ड्रामा भगवान को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो जो अंदर का निगेटिव कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि लड़ाई करने जाओगे किस किस से लड़ाई करोगे? किसी ने आके कान में कहा कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, हम कहेंगे कौन है वो, वो कहेंगे नहीं बस सुना है हमने, हम कहेंगे नहीं बताओ कौन था वो, मैं जाके पूछूंगा उससे ऐसा कैसे कह दिया, वो कहेंगे नहीं ऐसी बातें हो रही थी। क्या करोगे, कोई पता चल गया ये था वो तो पकड़ के पूछोगे, वो कहेगा मैंने बोला ही नहीं। ये ड्रामा भगवान को पसंद है। अगली पॉइंट, इस ड्रामा में कोई भी बीच से ऊपर नहीं जा सकता, जो एक बार नीचे आ गया उसको रहना पड़ेगा 5000 वर्ष तक, बीच से कोई जा नहीं सकता। और इसी के साथ जुड़ी हुई है, ये ड्रामा हाफ हाफ है, तो दुख का बना हुआ है, खेल है। बीच से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता, कोई जा नहीं सकता। ये थोड़ी ज्ञान के हिसाब से पॉइंट है। उसके बाद में अगली पॉइंट, इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? निर्दोष। निर्दोष नहीं है, कैसा है? संपूर्ण निर्दोष। कितना निर्दोष है? संपूर्ण निर्दोष। सारे झगड़े खत्म। संसार में सबसे ज्यादा खेला जा रहा एक ही गेम है, ब्लेम गेम। हर एक व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करता है, ब्लेम कल्चर है ये। अगर हम ये सोच ले यहां किसी का भी दोष नहीं है, ठीक है, अगर कोई गलती कर रहा है। उस दिन मुरली में था, बाप दादा ये नहीं कहते कि रॉन्ग को रॉन्ग ना करो, कहो। बाबा ये नहीं कहते कि रॉन्ग दिख रहा है और बाबा आप कहते नहीं रॉन्ग कहो नहीं, अंदर उसको समाना नहीं है। किसी व्यक्ति की बात अंदर गहराई तक नहीं समा के रखनी है कि ये ऐसा है, क्योंकि यहां सब कुछ बदल रहा है। व्यक्ति भी बदलेंगे, उनके संस्कार भी बदलेंगे, उनकी आदतें भी बदलेंगे। अब जो दिखाई दे रहा है क्रोध में है एकदम, शायद हो सकता है अंदर से परेशान है इसलिए क्रोध में है। कल शायद वो क्रोध नहीं रहेगा और शायद ये उसका स्वभाव ही नहीं है, ये जबरदस्ती कर रहा है ऐसा। इसलिए किसी के बारे में हम कोई भी निष्कर्ष न निकाले, जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। हम कौन है, हमें किसी के बारे में कितना पता है क्या? पति पत्नी पूरा जीवन एक साथ रहते 50 साल 40 साल, फिर भी अगर पति को पूछा जाए क्या तुमने समझाया अपनी पत्नी को, क्या कहेगा? बहुत मुश्किल है। पत्नी तो कह सकती है समझाए, पर पति तो बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाते एक दूसरे को। और हम समझते हमने दूसरों को समझ लिया, कितना समझा है, हमें कितनी बातें पता है उसकी। हमने देखा एक बहुत अच्छा योगी है, अच्छे भाषण करता है, और अमृत वेला हमने पकड़ लिया सो रहा था, पूरा इंप्रेशन खत्म। पर हमें पता है वो क्यों सो रहा था? हो सकता है उसे बुखार है, फिर भी अमृत वेला उठ कर आया है। हो सकता है रात भर सोया नहीं है फिर भी बैठा हुआ है। हमें क्या पता है कि इसके बारे में हम क्या कंक्लूड करें? जैसे सबने सुना होगा एक ट्रेन में एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ में उसका बेटा है जवान, और वो जो जवान बेटा है तालियां बजाता है, पिताजी पिताजी वो देखो झाड़ जा रहे हैं पीछे, थोड़ी देर में तालियां बजाता है पिताजी पिताजी बादल देखो कैसे उड़ रहे हैं। सामने एक दाम्पत्य बैठे रहते, वो कहते इतना बड़ा हो गया बेटा, अभी तक ये मूर्खों सी बातें करता है, इसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते? वो माँ बाप कहते हैं, वो पिताजी कहते हैं डॉक्टर के पास से ही तो ला रहे, ये जन्मांधता, आज ही तो उसको आंख मिली है, आज इसका पहला दिन है, ये आंखों से देख रहा है दुनिया को, इसलिए तो इसका आश्चर्य का भाव है उसमें। हमें कितना पता है किसके बारे में? कहीं वास्तव में किसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसलिए इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है यही समझना है, निर्दोष है। यहां किसी का कोई दोष नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी नहीं है, वो दोषी है नहीं है ये छोड़ो, पर हमें अपनी स्थिति के लिए हमेशा ये समझना है वो निर्दोष है। हमें किसी को पकड़ पकड़ के जाके करेक्ट नहीं करना है। दादी जानकी कहती है इस ब्राह्मण परिवार में अगर दुश्मन बनाने हैं तो सहज विधि क्या है, एक एक को जाके करेक्शन दो। अगर इस ब्राह्मण परिवार में दुश्मन बनाने हैं तो क्या करो, करेक्शन दो। हमको याद है मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में हम एक बार बैठे थे और सामने एक माता आके बैठ गई और उसका मोबाइल कम से कम 4 से 5 बार जोर से बजा योग के बीच में, अमृत वेला 4 और 4:15 के बीच। तो हमने मन में सोचा योग होने के बाद हम उसको समझाएंगे कि भाई मोबाइल बंद करो, पर जैसे योग पूरा हुआ हमारा काम दूसरे भाइयों ने कर दिया। कितने सारे आ गए उसको समझाने के लिए, हमने कहा आइंदा से हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि समझाने वाले करेक्शन देने वाले यहां बहुत बैठे हैं, अंबार लगी है करेक्शन देने वालों की, हमें कुछ करना नहीं है कि किसी को पकड़ के समझाए तुम गलत हो, ठीक है। हाँ, कोई पूछे तो अलग बात है। तो ये ड्रामा कैसा है, कहां पर थे हम? इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है।
उसके बाद में अगली पॉइंट, ये ड्रामा न्यायकारी है। हमें दिख रहा है अन्याय हो रहा है, ये अन्याय, वो अन्याय, ये अन्याय, हमें दिख रहा है अन्याय हो रहा है, हमारी संकुचित दृष्टि है। जैसे एक संत गुजर रहा है, वो देखता है एक बहुत मोटा तगड़ा व्यक्ति एक पतले दुबले व्यक्ति को पीट रहा है। संत हृदय नवनीत समान, नवनीत हल्का, बहुत मक्खन का जैसा हृदय पिघल गया। वो कहता है छोड़ो इसको, कितना अत्याचार कर रहे हो तुम, बेचारे कमजोर व्यक्ति को देख के मार रहे हो। और वो उस कमजोर व्यक्ति को छुड़ाता है और उस अलग करता है, वो जो पतला दुबला कमजोर व्यक्ति भाग जाता है। वो मोटा व्यक्ति कहता है तुमने ये क्या कर दिया, वो चोर था, मेरे पैसे लेके भाग गया, ये क्या कर दिया तुमने। ये ड्रामा न्यायकारी है, यहां पर किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है। जन जन के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। कोई जन्मांध पैदा होता है, कोई जन्म से ही बीमार है। ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते, बी के भाई बहने, एक बहन आती है जो अभी तो यंग है, 15-20 साल की उम्र होगी, धीरे धीरे चल नहीं पाती है, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। ऐसी एक रेयर बीमारी है उसको, फ्रेडरिच अटैक्सिया जेनेटिक, जिसमें व्यक्ति 15-20 साल के बाद चलना बंद हो जाता है, दीवार को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। अलग अलग अजीब वो गरीब बीमारियां आ जाती है जो पहले थी नहीं, और अब चलना बंद हो गया है उसका। पर एक बात देखी हमने, ये सब होते हुए भी स्थिति बहुत पावरफुल है उसकी, अपना घर पे ही बैठ के ज्ञान योग। ये नहीं कि पहले मैं इतना साइकिल चलाती थी, स्कूटी चलाती थी, ये करती थी, अब ऐसा मेरा थी क्यों हुआ। मैंने आपको ज्ञान योग से बहुत अचल रखा है, तो ये सब होगा, बीमारियां आएगी, कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ ना कुछ होगा। ये ड्रामा न्यायकारी है, दोष नहीं लगाते बैठना है। उसके बाद में अगली पॉइंट, ये ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे क्या छिपा है? कल्याण छिपा है। नुकसान के पर्दे के पीछे क्या छिपा है? फायदा छिपा है। इसके लिए एक बार अपने जीवन के सारे दृश्य देखना, जोकर पता चलेगा जो बात हुई थी ना, अच्छी हुई थी। मेरा अपना कोई स्वजन, उसकी मृत्यु हो गई, इतना दुखों में डूब गई आत्मा, ज्ञान योग की साथी, तपस्या की कोई साथी शरीर छोड़कर चली गई, हो सकता है वो भी उसमें भी कल्याण समाया था। तो इस ड्रामा के हर सीन में सूक्ष्म कल्याण छिपा हुआ है, बस उस कल्याण को देखने की नजर हमको चाहिए। देख लिया। उसके बाद में अगली पॉइंट, ये ड्रामा बेहद का है, अनलिमिटेड, बहुत विशाल ड्रामा है ये। इसके लिए हमारी सोच भी बहुत विशाल चाहिए इसको समझने के लिए। छोटी सोच रखकर रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। हम किसी के पास गए, उसने हमसे ठीक बात नहीं की, हमारी उसके प्रति कितनी भावना थी, फिर भी उसने ऐसी बात की हमसे, हो सकता है वो बहुत व्यस्त है, हमने कहां तक समझाया उसको। बेहद, बाबा ने हमेशा कहा है बेहद में रहकर सोचो, छोटी सोच, तंग नजर बाप को पसंद नहीं है, बृहद सोचना है, केवल मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये नहीं, ऊंचाई से बैठकर सोचना है, तो अलग नजारे दिखाई देंगे। बाद में ये ड्रामा, अगली पॉइंट, विविधतापूर्ण है। इसमें बहुत वैरायटी आत्माएं है, विविधतापूर्ण बाबा का शब्द है, ये ड्रामा विविधता है, वर्सेटाइल, इतनी वैरायटी है इसमें, एक ना मिले दूसरे से, ऐसे लोग हैं यहां पर, इतने सारे स्वभाव, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। इसके लिए कोई जीवन का साथी था वो चला गया, दुख किस बात का, कोई अपना था जो बिछड़ गया, दुख किस बात का, आत्माएं आ रही, आत्माएं जा रही, हम ट्रेन की बुगी में बैठे हैं, कोई दूसरा आया हमारे साथ बैठा, कुछ समय गया फिर उतर गया, हमें आगे बढ़ना है, दुख थोड़ी करते बैठेंगे। किसी के होने से, किसी के न होने से यह ड्रामा रुकता नहीं है। इसलिए अपने आप को चरणों रखें, हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, पत्नी मरे 5 साल हो गए, ज्ञान योग की साथी थी, सेवाओं में दोनों साथ साथ से गई, उदासी छा गई है, क्या करें? यही तो अप्लाई करना है ज्ञान को। इस ड्रामा बहुत विविधतापूर्ण है, वैरायटी है इसमें, बेहद का है ये, उसमें भी कल्याण छिपा हुआ है, हर चीज में यहां कल्याण छिपा हुआ है। अगर ड्रामा की वो सीन ना होती तो शायद ये भी सीन ना होती, वो होना था, बहुत जरूरी था। और एक बात जिसको अपनी डायरी में नोट करके रखना है, जितनी दर्दनाक सीन होगी, दर्दनाक सीन इस ड्रामा की होगी, परिणाम हर वक्त विकास होगा। परिणाम क्या होगा? विकास। द रिजल्ट इज ग्रोथ। हम बताइए, बहुत ही दर्दनाक सीन है, पर हर दर्द से जो जन्मेगा वो विकास जन्मेगा, आध्यात्मिक उन्नति जन्मेगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, हम और परिपक्व होंगे, और शक्तिशाली होंगे, और पावरफुल होंगे। इसलिए कुछ भी हो जाने दो, हर चीज को इसी तरह से लेना है। ये जो तीर जो है चुभे हुए, एक एक तीर मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए लगा है, हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और अच्छा आगे बढ़ना है। आज की मुरली में था सुबह, तुम्हारा माया से गुप्त मुकाबला है। सुबह था, माया बहुत जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे सेंटर पर रहने वाले बच्चों को भी माया पकड़ लेती है। कुछ दिन पहले था, तो शत्रु बहुत शक्तिशाली, पर वो यदि शक्तिशाली है तो हम भी कोई कम शक्तिशाली नहीं। उसके बाद में अगली पॉइंट, इस ड्रामा में नथिंग न्यू, इस ड्रामा में नथिंग न्यू। स्वामी विवेकानंद का दिखाते हैं कि उन्होंने जब छोटे थे अपने पिताजी से पूछा था, मुझे एक ऐसी शिक्षा कि मुझे जीवन भर काम आएगी। उनके पिताजी ने उनको कहा था, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी बात से कभी भी अचंभा नहीं हो जाना, आश्चर्यचकित नहीं हो जाना कभी, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। उसी तरह बाबा ने कहा, इस ड्रामा में नथिंग न्यू। बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है, नथिंग न्यू। सबने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन, उसके बेटे ने अपने पिताजी की ये बात रीडर डाइजेस्ट के 1952 के एक एडिशन में लिखी थी कि मेरे पिताजी 1910 एडिसन की कितनी बड़ी लैब थी, कितना बड़ा वो रिसर्च केंद्र था। और एक दिन शाम को 5 बजे सबको आग लग जाती है, एडिसन खड़ा हुआ देख रहा है इतनी सारी लैब, आग लग गई, सबको बचाने का कोई चांस नहीं है, इतने वर्षों का, इतने सालों का रिसर्च, इतनी मेहनत, कड़ी मशक्कत की हुई सारी बातें, सब जल रहा है आंखों के सामने। और वो देख रहा है, उसका बेटा भाग के आता है, कहता है, पिताजी ये क्या हो रहा है? वो कहता है, कुछ नहीं, अपनी माँ को बुला के लाओ। ऐसा दृश्य उसने कभी देखा नहीं होगा। उसकी माँ को बुला के लाता है और एडिसन एक बहुत अच्छी बात कहता है, देखो हमने आज तक जो गलतियां की ना, कैसी जल रही है, गलतियां जल रही है, रिसर्च नहीं जल रहा है, जो मेहनत की वो नहीं जल रही है, क्या जल रहा है, हमारी सारी गलतियां जल रही है। अगर कोई दूसरा होता तो हाय हुसैन, हाय रे बाबा, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, तुमने ये कर दिया। 6 मास के अंदर पूरी की पूरी नई लैब खड़ा कर देता है। शक्ति, साहस, रोते नहीं बेटा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हो गया तो हो गया। एक दूसरा ऑथर कभी हुआ था, थॉमस कार्लाय, उसने किताब लिखी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, इतनी मोटी किताब, और जो इतिहास की किताबें लिखी जाती है उसमें बहुत स्टडी करना पड़ता है, एक एक तारीख को, इस डेट को ये घटना हुई थी, और वो तो क्रांति की, फ्रांस की क्रांति की इतनी बड़ी किताब लिखी। और जब किताब लिखी, अपने मित्र को पढ़ने को दी, अभी पब्लिश नहीं हुई थी पांडुलिपि, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट था खाली, और मित्र घर लेके गया कि वो पेज, और उसने बस थोड़ा सा पढ़ा और रख दिया। वो नौकरानी आई, उसको लगे ऐसे कागज है, और वो आग जल रही थी, उसमें सारे डाल दिए। सोचो एक किताब लिखने के लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है, वो भी इतिहास की कोई किताब, वो भी क्रांति के ऊपर किताब अगर लिखनी हो तो। और फिर वो जब दोस्त आए, उसने देखा ये क्या हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा थॉमस को, और वो आता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। थॉमस कार्लाइल है, उसको एक शब्द भी नहीं बोलता है, कुछ नहीं, और फिर से दोबारा नई किताब लिखता है। और आज जो बहुत फेमस किताब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अवेलेबल है, वो सेकंड वर्शन है जो लिखा हुआ था। अगर कोई दूसरा होता तो क्या करता, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमको समझना चाहिए था, वहां क्यों रखा, तुमको देना ही नहीं चाहिए था पहले, तो तुम तो दोस्त ही पहले से ही ऐसे हो। कुछ नहीं कहा, नथिंग, चुप, फुल स्टॉप। उसी तरह शांतिवन की भी बात है, सबने सुनी होगी शायद। नया नया बहुत समय पहले आया किचन में, भंडारे में सेवा के लिए, और सुबह 4 बजे किचन में गया, देखा एक बहुत बड़ा वो है बर्तन जिसमें कुछ पानी है, उसको लगा पानी है, फेंक दिया, और बाद में पता चला वो पानी नहीं है, वो चाशनी है, कितने सारे किलो की शक्कर और उसका वो पानी, और घबरा गया, मेरे वजह से इतना नुकसान हो गया। और धीरे धीरे बात सारे डिपार्टमेंट में फैल गई, और उसको लगा बस अब जाना पड़ेगा, मेरे वजह से बहुत नुकसान हो गया, दादी प्रकाशमणि थे ने बुलाया, और जब उसको खबर मिली दादी ने बुलाया तो बस फिर तो गया, क्योंकि बात वहां तक पहुंच गई। और जब दादी के पास गया डरते हुए डरते हुए डरते हुए और बैठा, फिर दादी ने पूछा नाश्ता किया है क्या, ने कहा किया है, फिर दादी ने कहा टोली, अब क्या जाओ, एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, अगर बोल दिया होता तो शायद वो ज्ञान ही छोड़कर चला गया होता। नथिंग, फुल। उसके बाद में साक्षी भाव, इस ड्रामा, इस संसार में सब सुखी वो रह सकता है जो इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता है, कि मैं साक्षी हूं, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना, ये ड्रामा इधर है मैं इधर हूं, मैं इसका एक्टर भी हूं पर मैं ऑडियंस भी हूं, ये भी याद रखना है। तो बीच बीच में उधर से स्टेज से इधर जंप करना है ऑडियंस की कुर्सी पे, और वहां बैठकर देखना है, अच्छा ऐसा ऐसे चल रहा है, अच्छा ये मैं हूं, ये मेरा पार्ट है, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। जैसे वशिष्ठ और राम का योग वशिष्ठ में दिखाया, राम जी पूछते हैं वशिष्ठ को ये सूक्ष्म शरीर क्या है, उसमें वर्णन है सूक्ष्म शरीर का, वो कहते हैं राम चलो मैं तुमको दिखाता हूं, वो दोनों बैठे बाकी सब बच्चे सामने हैं, वो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठते हैं और राम को कहते हैं राम देखो वो वशिष्ठ नीचे बैठा है, कैसे भाषण दे रहा है, कितना अहंकारी दिख रहा है, अपने आप को ही साक्षी देख रहा है। तो इस ड्रामा में अपने ही पार्ट को और दूसरों के पार्ट को कैसे देखना है, साक्षी, तो ही अचल अवस्था होगी। उसके बाद में अगली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, इस ड्रामा में यह बात हमेशा याद रखनी है, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, अब उसका विस्तार नहीं करना है, क्यों हुआ कैसे हुआ, जो हो गया हो गया, माजी था, भूल गुजर गया, पास्ट, अब क्या होने वाला है उसका, दूध था गिर गया, वो वापस बर्तन में थोड़ी आएगा, भगवान भी नहीं बदल सकता उसको, जो हो गया फुल स्टॉप लगा दो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इस ड्रामा में 2 पॉइंट याद रखने हैं, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, कोई प्रश्न नहीं कोई कंप्लेंट नहीं, हम संतुष्ट है, बाबा तुमने जो कुछ दिया जैसे दिया जो दिया जैसे रखा, जिस स्थान पर हो जिस लोगों के बीच में हूं और जो मेरा पार्ट है मैं उससे संतुष्ट हूं, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट्स। उसके बाद में अगली पॉइंट, रिपीट, ड्रामा क्या होता है, रिपीट हो रहा है, पहले भी हुआ था अब भी हो रहा है, ठीक है पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसा हो रहा है, इसलिए दुखी नहीं होना है, रिपीटेशन है। उसके बाद में अगली पॉइंट, इस ड्रामा में जैसे पहले बताया था नथिंग न्यू, वैसे यहां पर दूसरी पॉइंट है, कोई भी आश्चर्य नहीं खाना है किसी भी बात को देखो, नो सरप्राइज, धक्का लगता है लोगों को, ऐसा ऐसा हो गया, वो अच्छा ज्ञान में चल रहा था छोड़ दिया, वो तो बहुत अच्छी बहन थी अब क्या हुआ ऐसे हो गया, अच्छा बाबा ने कहा ये यज्ञ एक दिन हिलेगा, जो कच्चे हैं सब निकल जाएंगे यहां से, जो पक्के हैं केवल वहीं रहेंगे यहाँ पर, बाकी जो कच्चे हैं, ढीले हैं, कमजोर है, सब यहां से हट जाएंगे, और जिन्होंने को अंदर से सच्चा जिगरी प्यार है बाप से केवल वहीं रहेंगे यहां पर, बाकी सब यहां से रफु चकर भाग जाएंगे, कोई ना कोई कारण बनेगा जाने का, ऊपर से तो कुछ कुछ दिखेगा पर अंदर से काम विकार होगा, अपवित्रता होगी, जो दबा दबी हुई थी वो बाहर निकलेगी और उनको ले जाएगी पुरानी दुनिया में। उसके बाद में ये ड्रामा सत्य है, 20वीं पॉइंट, ये ड्रामा सत्य है, जो हो रहा है वही सत्य है, भागना नहीं है सच्चाई से, मैं नहीं देख सकती, ये बहुत दर्दनाक है। ऑस्ट्रिच मेंटालिटी, शुतुरमुख होता है ना, दुश्मन आता है तो मुंह गाड़ देता है जमीन में, देखना है आंखों में आंखें डालकर, कोई निंदा कर रहा है सुनो उस निंदा को, शक्ति भरेगी अंदर, भागना नहीं है करने दो, यदि हम अंदर से वैसे है ही नहीं तो किसी की निंदा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है तुम बहुत अहंकारी हो, हमें पता है हमें अहंकार नहीं है तो डरने की क्या बात है। कोई कहता है तुम में ये अवगुण है, हमें पता है वो हमें नहीं है। कोई कहता है तुम में अपवित्रता है, हमें है ही नहीं पता है हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, हमें अपने एक एक विचार का पता है, अगर तो भय किस बात का, जिसको जो करना है करने दो। आग लगे बस्ती में और तुम रहो अपनी मस्ती में, ये ड्रामा सत्य है, और सत्य बहुत कड़वा होता है, कई बार सब कुछ सुनने की तैयारी चाहिए, सब कुछ सुनने की। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, कितना सहन किया। एक न्यूज़पेपर आता था इंग्लिश में उस समय, द सिंध ऑब्जर्वर, उसमें बाबा के लिए दो शब्दों का प्रयोग था, ही इज प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी एंड लेचरी। सॉर्सरी अर्थात जादू टोना, बंगाल से जादू टोना सीख किया है, लेचरी अर्थात कामांधता, कामुकता, ऐसे शब्द थे उस न्यूज़पेपर में। सब सहन किया, उनको पता है ये मुझ में है ही नहीं तो डरने की क्या बात, जिसको जो कहना है कहने दो। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कहेंगे, इसके लिए ना तो उनकी स्तुति से कोई प्रभाव, ना तो उनकी निंदा से कोई प्रभाव। लास्ट पॉइंट, ये ड्रामा बदला नहीं जा सकता, ये ड्रामा बदला, बड़ा दुखदाई पॉइंट लगता है ऊपर से तो, ये ड्रामा को तो क्या हम हर बार ऐसे ही होगा हमारा, नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर इस ड्रामा को बदलना है तो एक काम किया जा सकता है, कौन सा, अपनी दृष्टि को बदल दो तो ये ड्रामा भी बदल जाएगा, तो ये ड्रामा भी बदल जाएगा। तो ऐसी ये 21 बातें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और उसके बाद सभी शक्तिशाली योग के लिए बैठेंगे। सबसे पहली बात बताई, ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा कार्टून शो है, ये ड्रामा हर एक का पार्ट अलग अलग है, ये ड्रामा रहस्यपूर्ण है, ये ड्रामा फिक्स्ड है, इसके बाद में भगवान को पसंद है, ये ड्रामा में बीच से कोई भी नहीं जा सकता, ये ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है। उसके बाद में ये कैसा है, इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, ये ड्रामा विविधतापूर्ण है, ये ड्रामा में नथिंग न्यू है, ये ड्रामा साक्षी होकर देखना है, ये ड्रामा कैसा है, इसमें हर एक का पार्ट फिक्स्ड है, ये ड्रामा नो क्वेश्चंस नो कंप्लेंट रिपीट होता है, ये ड्रामा और कैसा है, इसमें नो सरप्राइज, इस ड्रामा, ये ड्रामा सत्य है, और लास्ट, ये ड्रामा बदला नहीं जा सकता पर हम इसको बदल सकते हैं यदि हम अपनी दृष्टि को बदल दे, अपने योग के चार्ट को इतना बढ़ा दो कि अपने आप सब कुछ नया दिखने लगेगा। ओम शांति।